તારીખ 23/12/1995 પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈ દ્વારા ઈડરમાં થયેલ તત્વચર્ચા સળંગ નંબર 138
પરિણામ છે ચાર પહેલું उस चारों पहलू से इस परिणाम को समझे तो उस परिणाम के विषय में हमको कोई अन्यथा कल्पना नहीं होगी। जैसे कि ज्ञान को समझना है तो ज्ञान की सत्ता कितनी कि स्वक्षेत्र प्रमाण, तो हर परिणाम के हर गुण के परिणाम जो है उनकी सत्ता तो स्वक्षेत्र प्रमाण ही होती है। फिर ज्ञान की शक्ति कैसी कि स्वपर प्रकाशक शक्ति है। ज्ञान की जाति कौन सी है कि इसकी दो जाति हो सकती है, एक मिथ्या जाति का ज्ञान और एक सम्यक जाति का, सम्यक जाति का ज्ञान, सब जिसको सम्यक ज्ञान कहते हैं। मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान ऐसे दो प्रकार की जाति हैं। और गति में भी दो प्रकार है, एक अल्पज्ञत्व है और एक सर्वज्ञत्व है। उसको कहते हैं कि गति यानी सद्भाव रूप और अभाव रूप, ऐसी गति है। तो अब आप प्रश्न ये निकाल सकते हैं कि एक ज्ञान की पर्याय को समझना है हमको, तो उस विषय में ये चारों पहलू से हम जानते हैं तो हमारी कोई गलती नहीं होगी। जैसे कि एक मुनिराज है, मुनिराज छठे सातवें गुण स्थान में विचरते हैं, लेकिन क्या हुआ कि उनको उघाड़ ज्ञान बहुत अल्प है, नव तत्व के नाम भी उसको आते नहीं है या स्मृति में रहते नहीं है, इतना सूक्ष्म ज्ञान अल्प है। फिर भी उनके ज्ञान के पर्याय को हमें समझना है तो कोई किसी भी प्रकार के उसमें गलती कैसे नहीं होगी कि हम चारों पहलुओं से समझेंगे तब। तो ठीक है, उसके पास तो सम्यक ज्ञान है तो इनकी और इनके जो ज्ञान की जाति है वो तो सम्यक है, अल्प बहुत हो तो एक पर इसकी गति होती है सर्वज्ञपना तो आगे हो ही जाएगा। अभी अल्प ज्ञान में थोड़ा अल्प हो या ज्यादा अल्प हो इससे क्या मतलब, जब जाति सम्यक है तो गति से गति का उतना कोई महत्व नहीं रहता, महत्व नहीं रहता। गति मैंने अल्पज्ञ है, छद्मस्थ है, 12 गुण स्थान तक अल्पज्ञ है और 13वें गुण स्थान से सर्वज्ञ, अल्प मैंने ज्ञान अल्प, अल्पज्ञ तो अल्प ज्ञान वाले, तो केवल ज्ञान नहीं है वहां तक, ज्ञान अनंतमा भाग में होता है चाहे वो 11 अंग 14 पूर्व का हो, वो तो अनुभव ज्ञान है, वो तो स्व विषय में, वो तो सम्यक ज्ञान की जाति में जाता है, वो धातु में जाता है, वो पहली जाति में जाता है। हम ये जो कम जानते हैं या ज्यादा जानते हैं उघाड़ जो है कम ज्यादा हो सकता है, सूक्ष्म का उघाड़ तो किसी को नव तत्व का याद नहीं रहता, किसी को 12 अंक का ज्ञान होता है, लेकिन सर्वज्ञ के आगे तो वो अनंत में भाग में है दोनों, तो उसकी जो कमी बैसी है उघाड़ की उसका कोई मूल्य नहीं है, इसके सर्वज्ञता का मूल्य है इस तरह से। और स्वपर प्रकाशक तो उसकी शक्ति है, चाहे अल्प हो चाहे ज्यादा हो, चाहे सम्यक हो चाहे मिथ्या हो, स्वपर प्रकाशक तो है ही, ये इसकी शक्ति है, तो इसका परिणाम तो हमेशा हमेशा होता ही रहता है। तो इस तरह से ज्ञान की पर्याय को चारों पहलुओं से समझे तो किसी भी गुण स्थान वाले के ज्ञान की पर्याय का हमें चारों पड़खों से ज्ञान रहता है तो कहीं भी असमाधान नहीं होएगा, वरना असमाधान हो जाएगा। कैसे, मुनि है नव तत्व का भी उसको ज्ञान नहीं है तो फिर मुनि कहाँ थे? अरे भाई, इसकी ज्ञान की जाति सम्यक हो गई है। फिर अल्प ज्ञान और ज्यादा ज्ञान का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि वो तो गति में जाता है और स्वपर प्रकाशक बना तो है ही। इस तरह से वो बात उस तरह से समझी जाती है तो समाधान बराबर रहता है। ऐसा ही कोई मिथ्या दृष्टि है। हाँ, देखने का जरूरत नहीं है, विषय नहीं, लेकिन भूल यहाँ होती है कि जैसे कोई मिथ्या दृष्टि है। और ग्यारह अंगों पूर्व का ज्ञान है और शास्त्र ज्ञान उसका यथार्थ है। तो जिसको सम्यक में मिथ्या जाति का समझ नहीं है उनको भ्रम होगा। नहीं, बुद्धिपूर्वक कॉन्ट्राडिक्शन नहीं दिखे। विभाग ऐसा है, हाँ, तो वो तो सम्यक मिथ्यात में जाता है। विभाग में इसकी गति में बहुत्व दिखेगा, अल्पत्व नहीं दिखेगा, बहुत्व दिखेगा। तो जिसको चारों पहलों से ज्ञान है उनको कोई असमाधान नहीं होगा, लेकिन किसी एक पहलू का ज्ञान होगा तो गड़बड़ हो जाएगी। उस तरह से होगा। ऐसे चारित्र का, चारित्र में भी ऐसे चार पहलू हैं। वो बनारसी दास ने लिया है अपने परमार्थ रचने का, मोक्ष मार्ग प्रकाशक यहाँ होगा किसी के पास, देख लीजिए। राखे से बड़ा साफ कर कुछ है ना।
प्रकाशक
और दूसरा कोई प्रश्न देंगे। पदार्थ माटे से आ पर्याय माटे से विक्षेत्र काल भाव वस्तु माटे से, केम के पर्याय ने तो विक्षेत्र काल भाव नहीं होता। पर्याय पोते काल स्वरूपे छे अने क्षेत्र एनु स्वद्रव्य प्रमाण छे, ए सत्तामां जाय छे, बाकी एने गुण नहीं होता एटले भाव नहीं, अने पोते द्रव्य नहीं पण पर्याय छे एटले द्रव्य ने भाव एने नहीं होता। खाली काल अने सत्ता क्षेत्र होय छे, चार एने चार लागू नहीं पड़ता, ए पदार्थ ने लागू पड़े। अलग अलग, वो अलग अलग बात है। जो सूक्ष्मता है वो रुचि के साथ रहती है, जितनी रुचि ज्यादा आत्मा के उतना आत्मा के विषय में ज्ञान सूक्ष्म होगा, और जितनी पर की रुचि ज्यादा है उतना पर के विषय में ज्ञान सूक्ष्म होगा। वो रुचि के साथ रहता है सूक्ष्मत्व। तो जिसको ज्ञान को सूक्ष्म करना है उसको रुचि बढ़ाना चाहिए। जैसे हम पेंसिल का पॉइंटेड शार्प पॉइंटेड पेंसिल लिखने में रखते हैं तो उसका संचा आता है, उसमें घुमाते हैं तो उसका पॉइंट निकलता है। बंडल में बाइंड किया, वैसे दूसरे में जैसे यहाँ लिखा हो देख लिया किताब कैसा वो नहीं नहीं लिखा है देख लिया
वो ये बता रहे थे ना उसको
तो ये रुचि है वो ज्ञान का संचय है उसको सार्थ कर देता है ऐसी बात है है कि ज्ञान की जो एक पर्याय है उसमें लब्ध उपयोग है तो ज्ञानी को अंदर टच होता है तो ज्ञानी का लब्ध जो है वो आत्मा के साथ जुड़ा हुआ रहता है इसलिए इसके उपयोग पर एक मर्यादा आ जाती है इसका उपयोग की एक मर्यादा होती है वो मर्यादा में क्या होता है कि वो एकत्व नहीं करता बाहर जाता है लेकिन एकत्व नहीं करता उतना फर्क रहता है इसके उपयोग में क्योंकि उसका पूरा पूरी ज्ञान की पर्याय का एक अंश और वो भी मुख्य अंश आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है खींचा अंदर रहता है तो बाहर जो बाहर बाहर का जो जाने का खिंचाव है वो तो खिंचाव के कारण से बाहर जाता है तो दोनों में बलवान खिंचाव अंदर का है उपयोग तो बाहर जाता है लेकिन पूरा ज्ञान का पर्याय बाहर नहीं जाता है उपयोग भी एक अंश है यानी का उपयोग भी एक अंश है इतनी सी बात है नानी होने के लिए तो भाव भाषण में आना होता है तो भाव भाषण के आगे के जितने भी स्टेज हैं उस स्टेज को जो क्रॉस कर गया और उसका उसका सतत अवलोकन चलता है इतनी जागृति आगे और इस अवलोकन पे आगे बढ़ करके उसका भेद ज्ञान का प्रयोग चालू हुआ है उस भेद ज्ञान के प्रयोग के दौरान उसको भाव भाषण आता है भाव भाषण आता है तब उसका अपने स्वरूप का भाव भाषण होने से इसका खिंचाव चालू होता है इसके पहले खिंचाव चालू नहीं होता है क्योंकि उसमें बहुत महिमा आती है और बहुत आत्मरस पैदा हो जाता है भाव भाषण होने के बाद भाव भाषण होने से खींचा स्वतः हो जाता है लेकिन भाव भाषण कैसे करना वो सवाल है तो भाव भाषण के लिए तो सतत प्रैक्टिस करना होता है एक और एक दो पहलू है इसका अंदर में प्रैक्टिस चालू रखो एक बात बाहर में सत्संग में परिणाम देखो बस दो का मेल हो गया तो काम होने वाला है हाँ वो तो निर्मलता तो भक्ति से ही आती है जितनी भक्ति तीव्र होती है उतनी निर्मलता आती है इसलिए 254 में परमेश्वर बुद्धि वाली बात कही वो चर्चा भी चल रही थी इतनी निर्मलता तो जिस निर्मलता के वशात भाव भाषण हो जाए निर्मलता की डिग्री में भी फर्क रहता है भाव भाषण जहां तक नहीं होता है, इसका मतलब क्या? देखो, हम जानते हैं कि आत्मा ज्ञान स्वभावी तत्व है, फिर भी हमको हमारा ज्ञान स्वभाव का भाषण क्यों नहीं होता? कि उतना हमारा ज्ञान में निर्मलता हो तो भाव भाषण हो जाए, क्योंकि स्वभाव निर्मल है। निर्मल स्वभाव को जानने के लिए जानने वाले को भी निर्मलता चाहिए। जैसे ज्ञानी है वो निर्मल है, तो उसका परिणाम देखने के लिए भी निर्मलता चाहिए। मलिन परिणाम से हम निर्मल तत्व को, निर्मल परिणाम को, निर्मल स्वभाव को नहीं जान सकते। जैसे दर्पण मैला हो तो उसमें प्रतिबिंब नहीं झेल सकता वो दर्पण, वो मलिनता निकल गई तो दर्पण प्रतिबिंब झेलेगा। जैसे ज्ञान का पर्याय तो दर्पण समान है, तो अपना स्वभाव का प्रतिबिंब वो क्यों नहीं झेलता? तो मलिन है, निर्मल नहीं है। तो ये जो वेदना है वो मलिनता को धोती है, उसका धोने का प्रोसेस चलता है। तो बंद करना चाहिए कि नहीं बंद करना चाहिए? कि नहीं बंद करना चाहिए, क्योंकि ये तो प्रोसेस चल रहा है, इसका धुलाई हो रही है, सफाई हो रही है। अब सफाई होगी उसमें परिश्रम तो होगा ही होगा। जैसे कमरे में बहुत टाइम से झाड़े झाँखरे, वो दीवार विवाल सब सब का नीचे धूली है, ऊपर सब सब ये है, दो चार साल से वो कमरा बंद हो, तो उनको सफाई करने में परिश्रम तो लगेगा, थोड़ा उसको साफ करने वाले को भी थोड़ा ये लगेगा कि ये तो सब अपने कपड़े बिगड़ते हैं, अपने मुंह बिगड़ते हैं, हाथ पर बिगड़ते हैं, ये सब होएगा, तकलीफ तो होगी। कमरा तो तभी साफ होगा कि तकलीफ परिश्रम करेंगे तब, तो ऐसे परिश्रम तो हो गए। खोज का भी परिश्रम है, वेदना का भी परिश्रम है, और ये इसका धुलाई का प्रोसेस है। और हमको भी प्रमाणिकता से माल लेना है, बाजार में जाएं, माल खरीदें और अगले को बोले कि बिना पैसे दे दो, हाँ, या कम पैसे में दे दो, हाँ, हमको नहीं करना चाहिए। हमको अगले को ये बोलना चाहिए कि आप पूरा पैसा लेकर के हमें माल देना, आधी कीमत में भी हमको नहीं चाहिए। क्यों? कि हम प्रमाणिकता से लेने वाले हैं, और भीख मांगने वाले भी नहीं, और दयादान भी लेने वाले नहीं हैं। तो पूरा पैसा लेकर के माल खरीदेंगे। ऐसे ही हमको पूरा पुरुषार्थ करके उपलब्ध करना है, जो भी उपलब्धि की हमारी होनी चाहिए अनुभूति की, उसमें हमको पूरा पुरुषार्थ देना है, करना है। उसमें हम क्यों ऐसी वृत्ति या अभिप्राय रखें कि कम परिश्रम में हमको माल मिल जाए, ऐसा क्यों रखे? हमको तो प्रमाणिकता से काम करना है। मेहता भी नहीं है, लेकिन हम इसे अपेक्षा क्यों रखे, वो बात है। मिलेगा तो नहीं, कम पुरुषार्थ में मिलने वाली चीज है ही नहीं, वो तो पूरा पुरुषार्थ से ही मिलती है। लेकिन कभी ऐसा विकल्प आ जाए उतावली में, जल्दी जल्दी होने में, तो ये करने लायक नहीं है। कभी कभी ऐसा विकल्प आ जाता है किसी को, सबको नहीं, कि हमको जल्दी जल्दी लाभ हो जाए।
ये तो
वीडियो लास्ट
का बात है कि
वीडियो लास्ट नहीं होता है, तो विरोल्लास हो गए वहां तक तो अच्छा है, लेकिन खोटी उतावली होनी नहीं चाहिए, अलाउड है वो, अलाउड है।
ये तो
भावावेश में आना भी नहीं है,
ये भावावेश
में नहीं है, क्योंकि वो सहज आता है विरोल्लास सहज आता है। विरोल्लास आने से संलग्नता होती है, ये इसका फायदा है। बाह्य दृष्टि से कहीं अंतर्दृष्टि, कुछ अंतर्दृष्टि प्रकट नहीं होती, आत्मा बाहर नहीं है, आत्मा तो अंदर में ही है, अंत तत्व स्वरूप है, इसलिए तुमको और कहीं जाना नहीं, परिणाम को कहीं भी भटकने को मत दे, नहीं देना है, उसे आत्मा में ही बारंबार लगा देना, बार बार आत्मा में ही लगाना, बार बार वहीं जाना, उसे ही ग्रहण करना, आत्मा के शरण में जाना, बड़ों के आश्रय से ही सब प्रकट होता है, स्वरूप से आत्मा महान है, बाहर में भी सत्पुरुष के शरण से ही सब प्रकट होता है, और आत्मा के शरण से ही सब प्रकट होता है। अगाध शक्ति वाला चैतन्य चक्रवर्ती को ग्रहण कर, यह एक ही को ग्रहण कर, उपयोग बाहर जाता है परंतु चैतन्य का आलम्बन उसे अंदर में ले आता है। सब ये ज्ञानी की बात क्या है कि ज्ञानी का उपयोग बाहर जाता है परंतु उसको भीतर में अपना चैतन्य स्वरूप का अवलंबन लिया हुआ है, वो उसको उपयोग को खींच करके अंदर में ले आता है, बार 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 ऐसे करते करते करते, यानी स्वरूप में लीनता जमते जमते सपक श्रेणी को प्रकट करके पूर्ण हो जाता है, जो वस्तु है उसी ऊपर ही तेरी दृष्टि का दौर बांधे, पर्याय के आलम्बन से कुछ नहीं होगा। ये 208 नंबर का वचना बैठे पूरा, लेकिन यहाँ प्रश्न अलग है। जैसे कहा कि परिणाम को आत्मा में ही लगा दे और कहीं भटकने मत जाने दे, तो कैसे लगाए वो प्रश्न है, लगाना तो है आत्मा में सबको, लेकिन कैसे लगाए वो प्रश्न है, समस्या है वो है। तो वो तो खिंचाव आता है, तो अंदर लगता है, आत्मा में लगता है परिणाम, खिंचाव कब आता है, पहचान होती है तब, भाव भाषण होता है तब, पहचान कब होती है तो परिचय होता है तब, परिचय कैसा होता है तो अवलोकन से होता है, एक ही प्रोसेस है, और कोई प्रोसेस है ही नहीं। देखो अवलोकन की प्रैक्टिस जितनी बढ़ी उतना परिचय होगा, और परिचय से पहचान सहज है क्या नहीं? किसी भी चीज या किसी भी व्यक्ति की परिचय से पहचान सहज है, बस बात खत्म, रह जाएगी। ये तो वेदना से लेके भावभाषण तक का सभी स्टेज सहज आता है। परिपक्वता एक स्टेज के आगे नेक्स्ट स्टेज में प्रवेश हो जाएगा, उसकी परिपक्वता यथार्थता होगी, आगे का स्टेज आ जाएगा। एकदम नेचुरल है, सहज होता है। जैसे हमारे संसार में क्या होता है, फिर आदमी की शादी होती है, उसमें पहले कुछ परिचय नहीं है, या उतना परिचय होता भी नहीं है घनिष्ठ, क्योंकि साथ में तो रहे नहीं, और अपने अपने परिवार में बड़े हुए हैं। शादी होने के बाद साथ में रहते हैं, और साथ में रहते हैं तो अगले का स्वभाव का परिचय होने से पता चलता है कि वो कैसा है, वो कैसी है। इसके पहले कहाँ पता चलता है? चलता है नहीं चलता है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि परिचय से पहचान हुई। ऐसे अनिजावलोकन से ज्ञान अपना अवलोकन जब करने का प्रैक्टिस चालू करता है तो उसका भाव भाषण सह जाता है। ये इसका नेचुरल प्रोसेस है। इस प्रोसेस से काम होता है वो तो पर्याप्त मात्रा में एकदम सफिशियंट लेवल पर होता है। अब ये सभी काम एकदम स्टेज की मैच्योरिटी पर ही होता है। इमैच्योर पोजीशन में काम करना चाहे तो भी हो जाता है। इसलिए जो ग्रंथों में बात है उसमें भीतर का प्रश्न का उत्तर मिलना मुश्किल है। जैसे बात तो ये आएगी कि परिणाम को कहीं भी भटकना भटकने देना नहीं, कि पहचान में सत्संग तो ज्ञानी पुरुष का चाहिए ही चाहिए। तो वो हो गया परिचय का प्रोसेस, साथ ही निर्मलता चाहिए, वरना कभी किसी को क्या होता है कि कि कोई ज्ञानी के साथ अनेक सालों तक रहता है फिर भी पहचान नहीं आती है, क्यों? कि उसके पास निर्मलता नहीं थी। तो ज्ञानी के संग में है, फिजिकली तो उसकी समीपता रहती है, खुद को निर्मलता नहीं थी तो पहचान नहीं आई। इसलिए संग भी होना चाहिए और निर्मलता भी होनी चाहिए, दोनों बात जरूरी है। निर्मलता नहीं हो और संग नहीं हो तो पहचान कहाँ से होगी, और संग हो और निर्मलता नहीं हो तो पहचान कहाँ से होगी। तो निर्मलता बिना संग निर्मलता आने का एक ही कारण है, तीव्र रुचि, तीव्र जरूरत की महसूस होना और उसकी तीव्र भावना हो जाना। जैसे सोगाने जी को ऐसी तीव्रता आ जाए कि चले नहीं इसके बिना, जीवन चले तो निर्मलता आई जाएगी। तो कहीं से भी ज्ञानी का की मुलाकात हो जाएगी।
निर्मलता
ज्ञानी का परिणमन देख सके वैसी निर्मलता, इसके भीतर का परिणमन को देख सके वैसी निर्मलता। तो उसको सुमुख तभी होता है कि उसको तीव्रता आती है तब। वो तो काम तो कितनी भी तेजी से, घंटों में काम हो सकता है और घंटों में हुआ सोगानी जी का, ये इसका सबूत है। उसने गुरुदेव को सुना, बाद में गुरुदेव को पहचाना, तो पहला संकेत भी हुआ। बाद में अनुभव दशा आई उसमें के बीच में स्वरूप निश्चित स्वरूप की पहचान भी आ गई, तो दूसरा संकेत तो पहले हुआ तब तो तीसरा हुआ। तो एक ही दिन में एक दो तीन तीनों संकेत हुआ क्या? नहीं हुआ। गुरुदेव को मिले तब तो उसको परिणाम के हुए देखा, फोटो तो वहां देखी थी आत्मधर्म में, लेकिन फोटो से काम होता नहीं है, फोटो से काम होता नहीं है, क्योंकि परोक्ष है, चाहिए प्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष की असर बहुत आती है, वो तो अपनी चर्चा में बात आता ही नहीं, तो प्रत्यक्ष की असर बहुत आती है। गोपाल देव का फोटो इधर है, लेकिन खुद विराजमान होते तो नहीं, फर्क कितना पड़ता कल्पना कर लो
ना, वो करने की जरूरत नहीं है,
तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। अपन सबको कृपा देव के प्रति भक्ति भाव है और उनको विचार हुआ स्वर्ग में से कि चलो आज तो घंटियां पर हम चले और वो मूल रूप लेकर के इधर विराजमान हो जाए सिलसिला पे, है पूरी। वो तो रूप बदल सकते हैं, वितरिक शरीर है ना, तो अपना रूप वो ऐसा कर सकते हैं, तो इधर आके बैठ जाए, देखो अपन लोगों के क्या हालत होती है। कल्पना कर लो ना
अपनी परिणति पे आधार है, साक्षात आएगा, बोले रहता અંદર
અનુભવ હોય ને એટલે
અમુક તો જોયા હોય ને એટલે કેવા તો
જરૂરત મહેસૂસ હોવી જોઈએ. તૃષ્ણા લગે ઓર પાણી નહીં મિલે તબ પાણી કી કિંમત હોતી હૈ. તૃષ્ણા લગે ઓર પાણી નહીં મિલે તો પાણી કી કિંમત હોતી હૈ. મેં પેર ધોને મેં પાણી કો ભૂલેગા. સતત કમ ચાલે કે જરૂરત લાગે ચૈતન્ય તત્વ ભી ઉત્કૃષ્ટ આશ્ચર્યકારી હૈ. વિશ્વ મેં કોઈ એસી મજબૂતી નહીં હૈ કે જો ચૈતન્ય તત્વ સે ઉચ્ચ કોટિ કી હો. यह चैतन्य तो तेरे पास ही है, मैंने तुम स्वयं ही हो, तुम रहो तो फिर शरीर के पर उत्सर्ग आने पर या शरीर छूटने का प्रसंग में तू क्यों तू डरता है क्यों? जो कोई बाधा पहुंचाता है ये तो पुद्गल को पहुंचाता है, उसकी पहुंच तेरा चैतन्य स्वरूप तक तो है ही नहीं. बाधा तो पुद्गल तक पहुंचती है और जो छूट जाता है वो तो तेरा था ही नहीं. शरीर छूट जाता है तो वो तो तेरा था ही नहीं. जो तेरा नहीं था वो छूट गया, भले ही छूट गया. उसका रहने से या छूट जाने से तुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वैसा का वैसा रहता है. तेरा तो मंगलकारी आश्चर्यकारी तत्व है, तो फिर तुझे डर किस बात का? डर काहे का? तो विनाशी
मंगलकारी और आश्चर्यकारी है, डर किस बात का है। जब तुम्हें अनंत सुख का धाम हो, अव्याबाध अनंत सुख का धाम तुम भी हो, तो फिर दुख का भय काहे का, दुख कहाँ से आएगा, दुखाने की कोई परिस्थिति नहीं होगी। तो सुख धाम में अनंत सुख अनंत चाहिए, जो साधना होती है संतों को, वो तुम खुद ही है। तो अनंत सुख तेरे में भरा हुआ है, तो दुख आएगा कहाँ से, जगह ही नहीं आएगी। हो जा निश्चिंत, कोई चिंता की आवश्यकता मैं वर्तमान में ही अनंत सुख से भरपूर हूँ, लबालब भरा हुआ हूँ। कैसा लबालब भरा हुआ, फिर दुख कहाँ से आएगा, जगह तो है। स्वरूप का आलम्बन में आता है, उसको दुख आने का कोई सवाल
नहीं
है। दो सौ तेरह नहीं है, क्या आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, जो कुछ होगा हम देख लेंगे, देखा जाएगा। जो ही लेसूँ ऐसे बात में बहुत गंभीरता है, ऐसा करके देखा था। तो इसका मतलब वो नहीं था कि उनकी निर्धनता अगर बढ़ जाती तो हम कुछ पैसे पहुंचा देते, गंभीरता वो नहीं है, वो तो सामान्य बात है। गंभीरता इस बात की थी कि उस वक्त भी आपके परिणाम हम गिरने नहीं देंगे, गिरने तो नहीं देंगे लेकिन इतने आगे बढ़ाएंगे कि जिसकी कल्पना आप अभी कर सकते हैं, ऐसी गंभीरता उसमें थी। उपाधि माटे भविष्यनी एक पल में पण चिंता करवी नहीं, उपाधि माटे भविष्यनी एक पळनी पण चिंता करवी नहीं। कर्यानो जे अभ्यास थई गयो छे तो टेव पड़ी गई है, वो विस्मरण कर्या रहे एनु भूली जाओ तो ज ईश्वर प्रसन्न थशे, एनी भाषा में समझावे छे। तो विस्मरण छे અને તો જ પરમ ભક્તિ પામવાનું ફળ છે, અને તો જ અમારો તમારો સંયોગ થયો તે યોગ્ય છે। આજે તો બધા નબળા સંયોગમાં ગભરાય છે બિચારા, તમે ગભરાવ તો અમારો તમારો સંયોગ થવાનો ફેર શું પડ્યો। ભવિષ્યની ઉપાધિની એક પળની પણ ચિંતા કરવી નહીં, ઉપાધિ માટે ભવિષ્યની એક પળની પણ ચિંતા કરવી નહીં। કર્યાનો જે અભ્યાસ છે તે પડી છે, વારંવાર થઈ જાય છે, થઈ ગયો છે તે વિસ્મરણ કર્યા રહે તો જ ઈશ્વર પ્રસન્ન થશે, અને તો જ પરમ ભક્તિ પામવાનું ફળ છે। તો તમને જે ભક્તિ છે એમાં આ વસ્તુ ન શોભે કે તમે તમારા સંયોગની ચિંતા માર્યો,
અને તો જ અમારો તમારો સંયોગ થયો યોગ્ય છે. નહીતર લોકો એમ કહેશે કે આ તો કૃપાળુના ભક્ત છે ને રોતલની જેમ રોવે છે. જો દાદા રોતા હોય ઉસકો મારે ગુજરાતીમાં રોતલ કહેતા હૈ, હિન્દીમાં ક્યાં કહેતા હૈ માલુમ નહીં. ક્યાં કહેતા હૈ જો બાર બાર રોને લગતા હૈ ને. તો બાત બાત મેં રોને લગે ક્યાં. નહીં ભાવુક નહીં, ભાવુક નહીં, એ ડરપોક હોતા હૈ, ના હિંમત હોતા હૈ, જિસકો બાત બાત મેં થોડી બાત મેં જ્યાદા દુઃખ લગ જાતા હૈ, સેન્સિટિવ જ્યાદા હોતા હૈ, તો બાત બાત મેં રોને લગતા હૈ. તો અમારે કહેતો કે એ રોતલ હૈ, રોતલ રોવણિયો રોવણો રોવણિયો ઠીક
છે.
હિન્દી ભાષા રોતા નહીં એ કહે રોતે નહીં રુલાતે. અરે સભી પ્રકાર કે મનુષ્ય હર પ્રાંત હોતા હૈ. જૈસે કોઈ બોલતે કે હમકો એસા હો ગયા, હમકો એસા હો ગયા, હમને ઉસને ડાંટા, હમારા એસા હો ગયા, હમારા એસા નુકસાન હો ગયા. એસે જો ગાતા હૈ અપની મુસીબતો કો બાર બાર ગાતા હૈ, જબ મિલે અપની મુસીબતો કો ગાતા રહે, ઉસકો હમારે યહાં કહેતા હૈ કે રોતલ હૈ, રોતલ રોતા હૈ, રોદણા રોવે છે એમ કે. રોતા હી રહેતા. તો કૃપાલુદેવને લિખા સુભાષભાઈ કો, લોગ એસા કહેંગે કે અરે યે કૃપાલુદેવ કા ભક્ત રોતલ હૈ ક્યા. યે વીરો કા માર્ગ હૈ, સુરવીરો કા માર્ગ હૈ, સુરવીરો કા માર્ગ મેં રોતલ કહાં સે આયા. ઉસકા કામ નહીં હૈ. કમઝોર હોતા હૈ તો ક્યા હૈ કે અપની કઠિનાઈઓ કો બાર બાર ગાયેગા, ઇસકા મતલબ રોતા હૈ. ઉપાધિ વિશે શું થાય છે, તમારી જે પરિસ્થિતિ છે એ ઉપાધિ વિશે શું થાય છે તે આપણે આગળ ઉપર જોઈ લઈશું. હું જોઈ લઈશ એમ નથી લઈશું, આપણે જોઈ લઈશું. મારે શું, આપણે જોઈ લઈશું એ વાતને, જોઈ લઈશું એનો અર્થ બહુ ગંભીર છે. શું ગંભીર છે પાછું પોતે નથી ખોલ્યું એમાં, મારી ગંભીર હાથ નથી એ નથી ખોલ્યું, પણ એ કહેવાય એમ માગે તો એ વખતે તમને હેઠે નહીં પડવા દઈએ, તમારા પરિણામને હેઠે નહીં જવા દઈએ અમે. તમે એવી રીતે ઉભા રહેશો કે તમારી યોગ્યતામાં વૃદ્ધિ થાય, તમારા પરિણામ ચડતા થાય, તમે આગળ વધી જાઓ એ વખતે, એવું અમે તમારી સાથે કામ કરીએ. પાત્રતા છે એ તો એક એમનો અભ્યાસ થઈ ગયો હતો. હું લખું છું એમને કે તમે ઉપર જે ઉપાધિ માંથી અહમ પણ મૂકવાના વચનો લખ્યા છે તે આપ થોડો વખત વિચાર કરશો, ત્યાં જ તમારી તેવી દશા થઈ રહે એની આપની મનોવૃત્તિ એટલે યોગ્યતા છે. અને એની ગાંડી શિક્ષા લખવાની, ગાંડી શિક્ષા એટલે શું કે અહમ પણ મૂકવું, કુટુંબમાં સંયોગમાં અહમ પણ મૂકવું, એવી ગાંધી શિક્ષા લખવાની શરૂઆતમાં હરિની ઈચ્છા હોવાથી મેં આપને લખી છે. મારી ઈચ્છા તો નથી લખી, થોડા ગુજરાતી મને ગ્રંથ લખી આવી ગયા. ઉપર જો ઉપાધિ મેં અહંત્વ દૂર કરને કે વચન લિખે હૈ ઉન પર આપ કુછ સમય વિચાર કરેંગે ક્યો હું વૈસી દશા હો જાયેગી એસી આપકી તો મનોવૃત્તિ હૈ યોગ્યતા તો બહુત હૈ પર એસી પાગલ શિક્ષા લિખને કી સર્વાત્મા હરિ કી ઈચ્છા હોને સે મેને આપકો લિખી હૈ કે કુટુંબ કે પ્રતિ તો સબકો મમત્વ રહે उनको सामाजिक धर्म या कौटुंबिक धर्म कहते हैं. पादुदेव ने लिखा कि तुम कुटुंब पर का ममत्व छोड़ दो, वो लौकिक दृष्टि से पागलपन की शिक्षा है. इसलिए यथासंभव इसे अपनाएं. पुनः पुनः आपसे अनुरोध है कि उपाधि में आप यथासंभव निसंगता से रहकर उद्यम करें, क्या होगा यह विचार छोड़ दें. इसको विशेष स्पष्ट बात लिखने की योग्यता अभी मुझे देने का अनुग्रह ईश्वर ने नहीं किया है. मैंने मैं बात को खोल करके नहीं लिखता हूँ क्योंकि ईश्वर ने अनुग्रह नहीं किया है कि आपको खोल करके लिखा जाए. इससे ज़्यादा लिखने की मना कर दिया मुझे, क्या गंभीरता है. और उसका कारण मेरी वैसी अधिक भक्ति नहीं है. आप सर्वथा निर्भय रहें ऐसी मेरी पुनः पुनः विनती है. इसके सिवा मैं और कुछ लिखने योग्य नहीं हूँ. देखो खोल करके नहीं लिखूंगा. इस विषय में समागम में हम बातचीत करेंगे, लिखूंगा समागम में बातचीत करेंगे. आप किसी तरह खुले नहीं ना हो, दुखी नहीं हो. ये खाली धीरज देने के लिए यही सम्मति नहीं दी है, खाली दिलासा नहीं दे रहा हूँ. परंतु वैसी अंतर में स्फूर्त हुई वैसी सम्मति दी है. हमारे अंतर में से कुछ बात निकली है, अधिक लिखा नहीं जा सकता. परंतु आपको आकुल नहीं रहना चाहिए. आपकी आकुलता कर्मबद्धता कारण है, इसलिए आपको आकुल रहना नहीं चाहिए. आप प्रतिकूलता को प्रतिकूलता मत समझो. इस विनती को बार बार मानिए. बाकी हम तो निर्बल है. देखो हम ऐसा नहीं कि आपको पैसा पहुंचा देंगे, हम तो निर्बल है. जरूर मानिए कि हम निर्बल है, परंतु ऊपर लिखी हुई हमारी सम्मति सबल है. इसी से हम सबल है. आपके परिणाम को गिरने देंगे, इसमें हम सबल है. किसी यहां से वो बात नहीं करती. बसी पैसी नहीं है परंतु शक्ति है आपके लिए. यही मार्ग योग्य, दूसरा मार्ग योग्य नहीं. आपके सभी प्रश्नों के यथोचित उत्तर उपाधि योग के कारण अपनी पूर्ण इच्छा से नहीं लिख सका हूँ. परंतु आप मेरे अंतर को समझ लेंगे ऐसी मुझे निष्पंडिता है। लिखितम आज्ञाकारी रायचंद, देखो ऐसे बात लिखे हैं, खुद को आज्ञाकारी बता रहे हैं, बहुत गंभीर है। बहुत गंभीर है,
Thank you.